نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. الله تعالى شأنه ہمیں جو دل دیا ہے, دل یہ بڑا قیمتی عضو ہے. دل ایمان کا اور ایمان کے ساتھ اخلاق فاضلہ, اچھی اچھی خوبیوں کا مرکز ہے. ایمان کہاں ہے؟ دل میں ہے. صبر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. صبر دل میں ہوتا ہے, اور جب دل میں صبر ہوتا ہے تو انسان صبر کر سکتا ہے. شکر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. دل میں شکر ہوگا تو بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لا سکے گا. اور یہ صبر شکر دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر, کسی شخص کو زیادہ بہتر اور زیادہ وسیع عطا, صبر سے زیادہ بہتر اور صبر سے زیادہ وسیع عطا نہیں دی گئی ہے. بہترین عطا, بہترین بخشش, بہترین نعمت یہ صبر ہے. اور وسیع بھی بہت زیادہ ہے, پیسوں سے بھی زیادہ وسیع. اس لیے کہ پیسوں کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو مصائب سے گزار نہیں سکتا, لیکن صبر کے نتیجے میں وہ مصائب سے بھی گزار سکتا ہے. ایک شخص کو کوئی بیماری ہو گئی اور اس کے پاس 2,00,000 روپیے ہیں مگر صبر نہیں ہے, تو 25,000 خرچ ہو گئے, 2,000 خرچ ہو گئے, 10,000 خرچ ہو گئے, خرچ ہوتے ہوتے یہ 2,00,000 روپیے خرچ ہو گئے مگر بیماری نہیں گئی, تو اس کے پاس جو بخشش تھی وہ ختم ہو گئی, اس لیے کہ وہ وسیع نہیں تھی. اور دوسرے شخص کے پاس 2,00,000 روپیے نہیں ہے مگر اس کے پاس صبر کا خزانہ ہے. تو یہ جب تک زندہ رہے گا صبر کے ذریعے اس مصیبت کا تحمل کرے گا اور اس مصیبت سے گزرے گا. تو اسی طرح دنیا کی کسی بھی مصیبت کو, کسی بھی تکلیف کو لے لو, کسی بھی بیماری کو لے لو, کسی بھی سچویشن کو لے لو, دنیا بھر کے جتنے وسائل ہیں وہ وسائل اتنے وسیع نہیں ہے جتنی وسیع صبر ہے. اور شکر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور مزید دوں گا. تو صبر جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, جس نعمت کے نتیجے میں انسان دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو نعمت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, اس لیے کہ شکر کرے گا تو بڑھے گی, شکر کرے گا تو بڑھے گی, شکر کرے گا تو بڑھے گی, شکر کرے گا تو بڑھے گی. तो ये सब्र कहां है? दिल में। शुक्र कहां होता है? दिल में। इखलास किसी काम को खालिस अल्लाह जल्ल जलालहु अम्म नवालहु की रजा जोई के लिए करना, ये कहां होता है? दिल में होता है। दिल में जब इखलास होता है तो बंदा हर काम अल्लाह को राजी करने के लिए करता है, उसका हर कदम अल्लाह के लिए उठता है और उसकी हर नकलो हरकत, उसका हर सुकून अल्लाह के लिए होता है, उसकी जुबान से निकलने वाला हर बोल अल्लाह के लिए होता है, उसका हर सजदा, उसका हर रुकू अल्लाह के लिए होता है, उसकी तिलावत, उसका तवाफ, उसकी इबादत अल्लाह के लिए। और जगह जगह हमें कुरान मजीद में, अहादीस शरीफा में रहनुमाई मिलती है कि जो नेक लोग होते हैं वो जब भी कोई काम करते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यबतगून फदलम मिनल्लाहि वरिदवाना। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन की कुछ खसूसियतें इस आयत में बयान की गई हैं कि वो रुकू करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, मगर ये रुकू और सजदा किसी दुनियावी गर्ज से नहीं करते, किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं करते, किसी दुनियावी मनसब के लिए नहीं करते, दुनियावी शोहरत के लिए नहीं करते, बल्कि वो मुतलाशी होते हैं रुकू और सजदे और इबादत के जरिए अल्लाह के फजल के और अल्लाह की रजामंदी के। और अहादीस शरीफा में और कुरान मजीद में हमें इसकी तरफ भी मुतवज्जह किया जाता है कि जो अमल करो अल्लाह के लिए करो। चुनांचे हज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन हज लिल्लाह, ये नहीं फरमाया कि मन हज, वो शख्स जिसने हज कर लिया या वो शख्स जो हज कर लेगा। फलम यरफुस वलम यफसुक, फिर वो हज के दौरान न जुबान से कोई बेहुदा बात करेगा, न कोई अल्लाह को नाराज करने वाला अमल करेगा। तो रजा कयोमिन वलदत हु उम्म, तो हज से फारिग होने के बाद जब वो अपने घर की तरफ लौटेगा तो उस दिन की तरह साफ सुथरा और पाक और साफ होकर लौटेगा जिस दिन उसकी मां ने उसको जना था। तो सिर्फ हज पर, हज के अफाल पर ये फजीलत मुरतब नहीं हुई, बल्कि मन हज लिल्लाह, जो शख्स अल्लाह के लिए हज करेगा, जो मर्द अल्लाह के लिए हज करेगा, जो औरत अल्लाह के लिए हज करेगी अल्लाह को राजी करने के लिए, हाजी साहिब कहलवाने के लिए नहीं, हाजी के टाइटल के लिए नहीं, लोगों में अपना मकाम बुलंद करने के लिए नहीं कि माशाअल्लाह ये हाजी हैं। होता है ऐसा ऐसी जगहों पर जहां गरीब लोग रहते हैं और मुश्किल से कोई हज बैतुल्लाह का इरादा भी कर सकता है, वहां से कोई जाता है तो उसके दिल में ऐसा ख्याल आता है कि मेरा मकाम बुलंद हो जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि ऐसी जगह पर रहते हैं जहां लोग हज के लिए तो बहुत जाते हैं लेकिन खानदान में कोई नहीं गया है, तो उस वक्त भी ये ख्याल आता है कि हमारा मकाम बुलंद हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि पे दर पे हज करते हैं इस ख्याल से कि लोगों की नजरों में हमारा एक मकाम बुलंद होगा कि इन्होंने 5 हज किए, इन्होंने 10 हज किए, इन्होंने 15 हज किए, इन्होंने 20 हज किए। तो जो हज अल्लाह की रजा जोई के लिए नहीं होता, लोगों की वाहवाह के लिए होता है, अपने मकाम को बुलंद करने के लिए होता है, या लोगों की शर्म की वजह से होता है कि मैं हज नहीं करूंगा तो लोग ये समझेंगे कि इस इलाके में सब हज कर चुके हैं, ये मालदार हैं, इनके ऊपर हज फर्ज है, उसके बावजूद ये नहीं जाते, लोग मुझे बार बार पूछते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत में एक वक्त आएगा कि मालदार लोग हज के लिए जाएंगे तो तफरीह की गरज से जाएंगे कि जरा ब्रेक मिल जाए, हमें थोड़ी तफरीह हो जाएगी। तो हज तो एक पुरमशक्कत सफर है। तो तालिबे इल्मी के जमाने में जब ये हदीस पढ़ी थी तो समझ में नहीं आती थी बात, इसलिए कि उस वक्त हज पुरमशक्कत था। और अब जो है हज में इतनी फैसिलिटी आ गई, 5-star होटल, 6-star होटल, 7-star होटल, 8-star होटल, कि लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं कि गोया एक किस्म की हॉलीडे हो जाएगी, राहतें, आसाइशें, आराम, होटल के कमरों में टीवी, और बहुत से लोग मशगूल रहते हैं वहां प्रोग्रामों में, और फिर इस होटल में खाने के लिए जाओ, उस होटल में खाने के लिए जाओ, वो जो ब्रांड्स जो हमारे मुल्कों में हलाल नहीं होते, केंटकी फ्राइड चिकन, मैकडॉनल्ड्स, अपनी सारी चाहतें वहां पूरी करो। और मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, बस नमाज के लिए गई और निकल आई, नमाज के लिए गई और निकल आई, नमाज के लिए गई और निकल आई। और मगरिब और ईशा के दरमियान सब मस्जिद में बैठते हैं, मगर वो एक दूसरे से मिलने जुलने का वक्त होता है, मुलाकातों का वक्त, गप्पों का वक्त, इधर उधर की बातों का वक्त। और रातों को अगर किसी को तौफीक मिल जाती है तो एक आध घंटे के लिए हरम में चले गए, 2-4 तवाफ कर लिए, वरना बाकी पूरा ध्यान जो है वो शॉपिंग में होता है, मुलाकातों में होता है, बाजारों में होता है, खाने पीने में होता है, होटलों में ऐशो इशरत में होता है। हमारे एक दोस्त कुछ सालों पहले हज के लिए गए थे, तो उन्होंने बहुत महंगा पैकेज लिया था। तो ऐसा महंगा पैकेज उन्होंने लिया था कि वो मीना में भी उन्होंने मुझे फोटो भी दिखाई उसके, तो मीना में भी ऐसे सोफे और ऐसे बेड वगैरह थे कि ऐसा लग रहा था कि आप किसी 5-star होटल में हैं। और वो बहुत खुश होकर के मुझे कह रहे थे कि बड़े मजे वाला हज रहा, पता ही नहीं चला कि हज है। बहुत खुशी से कह रहे थे, पता ही नहीं चला कि हज कर रहे हैं, कोई मशक्कत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कहने लगे कि मीना में तो हमें एहसास ही नहीं था कि हम मीना में हैं, अरफात में एहसास ही नहीं था कि हम अरफात में हैं। तो वो हज ही किया है कि जिसमें इंसान को पता ही न चले कि हज हो रहा है। हज जो है हज वो माली और बदनी इबादत है। इसका मतलब ये है कि माली एतबार से भी एहसास होना चाहिए कि कुछ खर्च हुआ है, और बदनी एतबार से भी कुछ एहसास होना चाहिए कि कुछ मशक्कत आई है। एक मर्तबा हमने एक बहुत सस्ता हज किया था, यहां से हम लोग सीधे मदीना मुनव्वरा चले गए, और मदीना मुनव्वरा में 8 दिन का कयाम रहा, तो 8 दिन का खर्चा हुआ। उस वक्त ये पैकेज वैकेज तो होते नहीं थे, और मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आखिरी दिन पहुंचे और हरम शरीफ में तवाफ किया, तवाफ़ कुदूम, हमने हज्जे इफराद किया था। और तवाफ़ कुदूम से फारिग होने के बाद हम लोग चले गए, हज्जे इफराद किया था या हज्जे किरान किया था, इस वक्त मुस्तहजर नहीं है। तो हमें जो कुछ करना था वो फारिग हो गए, तो तकरीबन असर मगरिब के वक्त पहुंचे होंगे, जोहर के बाद किसी वक्त पहुंचे, और रात को इन सब कामों से फारिग होने के बाद फिर फजर की नमाज के बाद हमें रवाना होना था मीना के लिए, तो मीना चले गए। तो मक्का मुकर्रमा का पूरा हमारा खर्च बच गया। उस जमाने में मक्का मुकर्रमा में हज के सीजन में 300-400-500 पाउंड होते थे एक आदमी के, तो हमारा ये पूरा खर्च बच गया। और हज के बाद जितना हमारा कयाम था तो होटलों में गए, तो हज के बाद ये सिस्टम हो जाती थी उस जमाने में कि यौमिया, कि भाई एक दिन की 40 रियाल, एक दिन की 50 रियाल, और हज के बाद तो कोई आता नहीं होटलों में, तो बहुत सस्ता हो जाता था। तो तकरीबन 2000 पाउंड का हज होता था, वो हम लोगों ने उस वक्त 1100-1200 में कर लिया था। तो मेरे बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम उस्ताद जिनसे मैंने कई किताबें पढ़ी और पूरी बुखारी शरीफ अव्वल ता आखिर उनसे पढ़ी, हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहिब रहिमहुल्लाह ताला, बहुत नेक आदमी थी हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और मुफ्ती आजम हिंद थे, उनके वो शागिर्द थे। और तकवा और परहेजगारी भी बहुत आला दर्जे की। वो मदरसे में पढ़ाते थे शव्वाल से रमजान मुबारक तक, और रमजान मुबारक में हर साल इस नीयत से हरमैन शरीफेन जाते थे कि अल्लाह ताला शानहु मुझे मदीना मुनव्वरा की मौत नसीब करे। और उनके दिल में ये था कि पूरा कयाम तो वहां कानूनी रुकावटें, फिर मेरी दरसो तदरीस यहां, लेकिन जितना मुझसे हो सके वो तो मैं करूं। और जो आखिरी सफर हजरत का हुआ और फिर वहां हजरत का इंतकाल हुआ, तो मेरी हजरत से यहां नॉटिंगहम में हजरत मौलाना कमाल साहिब रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा था, तो वहां खत्म बुखारी शरीफ के लिए हजरत तशरीफ लाए थे, तो बोल्टन से यहां तशरीफ लाए, यहां से फिर लंदन जाना था हमारे दोस्त हजरत मौलाना मुनव्वर साहिब मुद्दज़िल्लुहुमुल आली के यहां, जो हजरत के दामाद होते हैं, और वहां से फिर हजरत की फ्लाइट थी। तो मैं भी यहां गया था, एक तो खत्म बुखारी शरीफ की बरकतें, दुआओं की कबूलियत, मदरसे की बरकतें, तलबा की बरकतें, और फिर हजरत तशरीफ ला रहे थे। तो मैंने खत्म बुखारी शरीफ के बाद हजरत की खिदमत में अर्ज किया कि हजरत आप लेस्टर तशरीफ लाएं और लेस्टर से फिर आप लंदन की तरफ जाएं, अभी तो आपकी फ्लाइट कल है। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, निजाम तय हो चुका है, बस मैं आज ही चला जाऊंगा, मुझे आराम मिल जाए, बूढ़ा हो गया हूं। तो मैंने कहा हजरत फिर वापसी में जब आप उमरा करके वापस आ जाएं, तो लंदन से बोल्टन जाते हुए आप लेस्टर रुक करके जाएं, मैं इंशाल्लाह आपको लंदन से लेस्टर लाने का और लेस्टर से बोल्टन पहुंचाने का इंतजाम भी कर लूंगा। तो मुझसे फरमाने लगे कि मुझे बद्दुआ क्यों देते हो तुम। तो मैं समझ नहीं सका कि बद्दुआ का क्या माना। तो फिर समझाया, फिर मुझसे कहा कि मैं तो वहां मदीना मुनव्वरा मरने के लिए जा रहा हूं और तुम्हें जो बद्दुआ दे रहे हो कि तुम वापस आ जाओ। तो हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहिब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए। एक मरतबा तो हजरत जो है रमजान के लिए तशरीफ ले गए थे और हज के बाद तशरीफ लाए थे, ये जज्बा था कि मेरी मौत वहां आ जाए हरमैन शरीफेन में। अल्लाह हम सबको कबूलियत वाली, शहादत वाली मदीना मुनव्वरा की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह हमें सच्ची तलब नसीब फरमाए। सच्ची तलब होगी तो जरूर मिलेगी मौत, और अगर किसी को जाहिरन नहीं मिलेगी तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमाएंगे कि कब्र से मुंतकिल फरमा देंगे वहां। ऐसे भी वाकयात हुए हैं। तो अल्लाह ताला शानहु ने उनको मदीना मुनव्वरा की मौत अता फरमाई रमजानुल मुबारक में 27वीं शब में, और इत्तेफाक ये हुआ कि उस साल अइम्मतुल हरम ने रमजानुल मुबारक में कुरान भी 29 के बजाय 29th के बजाय 27th को कर दिया, और तहज्जुद के वक्त तहज्जुद की नमाज में सजदे की हालत में रूह कब्ज हुई। तो जिस साल की मैं बात कर रहा हूं उस साल हजरत भी हज के लिए तशरीफ लाए थे, तो मुझे पता चला, तो मैं ढूंढते हजरत की मुलाकात के लिए पहुंचा। तो बस मुलाकात होती ही हजरत फरमाने लगे कि भाई पता चला है कि तुमने बहुत सस्ता हज किया है, हमें भी तरीका बताओ कि ये सस्ता हज कैसे हुआ। तो मैंने हजरत की खिदमत में अर्ज किया, तो उस वक्त हजरत ने ये बात बतलाई। हजरत ने फरमाया, खुश हुए कि भाई माशाल्लाह आपको हज का एक जज्बा था, हम 8-10 आदमी गए थे, तो हज का एक जज्बा था, और जिसके पास पैसे न हो तो जाहिर है कि इस तरह भी हज हो जावे। लेकिन हजरत ने मुझसे फरमाया कि एक बात याद रखो कि हज सिर्फ बदनी इबादत नहीं है, कि बदन मशक्कत बर्दाश्त कर ले और हज हो गया, हज बदनी इबादत भी है और माली इबादत भी है। इसका मतलब यह है कि इतना खर्च करना चाहिए कि महसूस हो कि मैंने खर्च किया। और हमारी तो हालत ही है इसी थी उस वक्त कि हमें तो बहुत महसूस हुआ था कि हमने खर्च किया है, लेकिन एक हजरत ने एक बात सिखाई हमें। तो जिस तरह हजरत ने फरमाया था कि हज सिर्फ बदनी इबादत नहीं है, माली इबादत भी है, तो इसी तरह ऐसे लोगों को जो मालदार है उनकी खिदमत में मेरी गुजारिश ये है कि हज सिर्फ माली इबादत नहीं, बदनी इबादत भी है, महसूस भी होना चाहिए, बदन को भी महसूस होना चाहिए कि हम हज कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद जो है आज हमें समझ में आ रहा है कि मेरी उम्मत के मालदार लोग सैर व तफरी की गरज से जाएंगे वहां, सैर व तफरी की गरज से, और जो दीनी मिजाज के लोग हैं उन्हें बहुत इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, इसलिए कि उनके जहनों में कभी कभी ये बात आती है कि टर्की जाएंगे या मलेशिया जाएंगे तो वहां माहौल साजगार नहीं होगा, अभी पर्दगी वगैरह होगी, चलो हॉलीडे, मतलब एक हॉलीडे की जगह पर उमरा कर लेते हैं। तो किसी दर्जे में ये बात भी ठीक है कि गुनाह से बच रहे हैं, लेकिन अल्लाह जल्ला जलालहू आम मनवालहू के घर में जा रहे हैं और हॉलीडे की नीयत से, सैर तफरी की नीयत से, वहां तो अल्लाह जल्ला जलालहू आम मनवालहू को पाने के लिए जाते हैं। हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मरतबा तवील कयाम हुआ हरमिन शरीफेन में, तो ये हजरत की हिजरत के बाद का वाकया है या किसी हज के लिए तशरीफ ले गए उसका वाकया होगा। तो मौलाना आशिक इलाही मिर्ठी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मक्का मुकर्रमा में गर्मी बहुत बढ़ गई और वो जमाना एयर कंडीशन वगैरह का नहीं था, तो हमने हजरत की खिदमत में अर्ज किया कि हजरत गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई है, तो हजरत को तकलीफ हो रही होगी, तो कुछ दिनों के लिए हम आपको ताइफ ले जाते हैं, और ताइफ का वेदर जो है वो मोतदिल है, वो मॉडरेट है, वहां ठंडक रहती है। तो हजरत ने जवाब में इरशाद फरमाया कि अगर ताइफ की ठंडक हासिल करनी होती तो हम कश्मीर और मरी ही चले जाते, हिंदुस्तान से यहां तक जो आए हुए हैं वो ठंडक हासिल करने के लिए नहीं आए, हम तो मक्का मुकर्रमा की अनवार हासिल करने के लिए आए हैं, मक्का मुकर्रमा की बरकतें हासिल करने के लिए आए हैं। तो कुछ लोग इस नीयत से जाएंगे सैरो तफरी, और मेरी उम्मत की मुतवस्सित मिडिल क्लास के लोग वहां जाएंगे तिजारत की गर्ज से, कि वहां जाएंगे देखेंगे, हो सकता है कि किसी जगह किसी ताजिर से मुलाकात हो जाए जो दूसरे मुल्क से आया हो, कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बहाने मिल जावे, मक्का मुकर्रमा से सऊदी अरब से कुछ इम्पोर्ट हम यहां करें, यहां से कुछ एक्सपोर्ट करें, और मेरी उम्मत के निचले तबके के लोग, गरीब तबके के लोग वो जाएंगे उमरे के लिए, तो उनकी नीयत ये होगी कि हम सवाल करेंगे ताकि हमारी आमदनी हो। अब ये बिजनेस वालों का तो पता नहीं चलता, इससे कि वो तो इनफिरादी अमल है उनका कि पता नहीं क्या क्या करते होंगे, इससे कि हदीस तो अपनी जगह पे सच्ची होगी, लेकिन मांगने वालों को भी बहुत देखते हैं, टोले के टोले आते हैं, और ऐसा सुना है कि जमातें आती है, उनका एक ऊपर लीडर होता है, नीचे काम करने वाले होते हैं, और वो यूं सफों के अंदर बस घूमते ही रहते हैं और मांगते ही रहते हैं। और मेरी उम्मत के उलमा और कुर्रा वो जाह के लिए जाएंगे, तो भाई वहां जाके हम बयानात करेंगे, इस होटल में बयान, उस होटल में बयान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने लोग होटलों में बयान करने के लिए आते हैं वो रियान ही आते हैं, मगर ये कि वहां जाएंगे इस होटल में बयान, उस होटल में बयान, है ग्रुप लीडर होंगे तो हमारी इज्जत होगी, सब हमें हमारी तरफ रुजू करेंगे, मसाइल पूछेंगे। पहले ये शक्लें नहीं होती थी, मैंने भी ये शक्लें मैं जब हज के लिए गया था तो नहीं देखी थी, इस वक्त है, मैं किसी पर फतवा नहीं लगाता, लेकिन ये हदीस की तशरीह कर रहा हूं कि इसमें भी इम्कान हो जाता है कि इसकी तरफ आदमी जाह तलब में मुब्तला हो जाता है कि भाई लोग हमारे मोतकिद बनेंगे, लोगों के साथ तारुफ होगा, फिर जब वापस आएंगे हमें बयानात के लिए बुलाएंगे, हमारी शोहरत बढ़ेगी, कुर्रा किरात पढ़ेंगे, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करेंगे। تو اخلاص 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 کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. یعنی اخلاص والا اخلاص کے بغیر جو عمل ہوتا ہے وہ جھوٹی نوٹ کی طرح ہے, جھوٹی کرنسی کی طرح ہے, فوجڈ کرنسی کی طرح ہے, جعلی نوٹ کی طرح ہے. اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے, اس کا انکم ہو رہا ہے, 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 ڈالر اور پاؤنڈ کی نوٹیں جمع کر رہا ہے, گٹھڑیاں تیار ہو رہی ہیں اس کی, اور ماشاءاللہ ایسا اسے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے, میرے پاس بہت پیسہ ہے, میرے پاس بہت پیسہ ہے. لیکن جب خرچ کرنے کا موقع آیا, ایک لاکھ, دو لاکھ, تین لاکھ, چار لاکھ جو جمع ہوئے تھے صحیح طریقے سے اس نے کمائے تھے, لیکن کرنسی جو ہے وہ فیک تھی. تو فیک تھی تو جب وہ بینک میں گیا اس پیسے کو جمع کرانے کے لیے, تو بینک والوں نے کہا کہ بھئی یہ تو فیک نوٹس ہے, اور فیک نوٹس ہے تو بجائے کچھ ملنے کے وہ گرفتار ہو گیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی ایسا سمجھتے رہیں کہ بہت نوافل ہیں, بہت نمازیں ہیں, بہت ذکر و اذکار ہیں, بہت تلاوت ہیں, بہت حج ہیں, بہت عمرے ہیں, بہت دین کی خدمت ہے, بہت تبلیغ ہے, بہت دعوت ہے, بہت بیانات ہے, بہت واعظ و نصیحت ہے, اور اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنا ہے, مگر اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے بالکل وہ جعلی نوٹ کی طرح ہے, یہ فیک نوٹ کی طرح ہے. تو قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ تو ساری فیک نوٹ ہے, اور ہم گرفتار ہو جائیں کہ فیک نوٹ لانے والے کو گرفتار کرو. اخلاص, اللہ تعالی شانہ ہو یہ دولت ہمیں نصیب فرمائے. تو یہ دل جو ہے, دل یہ بہت قیمتی جگہ ہے, اس میں ایمان ہوتا ہے. ایمان, ایمان جب تک نہ ہو وہاں تک آخرت میں نجات ممکن نہیں. ایمان جب تک نہ ہو. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا عجیب و غریب ارشاد ہے, غالباً حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے. وہ اللہ جل جلالہ وعام نوازہ کی رحمت پر ان کو بہت زیادہ بھروسہ تھا, اور پھر یہ کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت اعلی درجے کے لوگوں میں سے ہیں, امت کے بہت اعلی درجے کے, امت کے ٹاپ لوگوں میں سے تھے, بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی. ان کے شاگردوں میں حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی, ان کے شاگردوں میں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی, ایسے جدیر القدر لوگ, اور مستجاب الدعوات اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے تعلق اعلی درجے کا. تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ غالباً یہ بنو امیہ, خلفائے بنو امیہ یا خلفائے بنو عباس میں سے کوئی ہوگا ان کے زمانے میں, تو وہ کسی بات پر ان سے ناراض ہو گیا. اسے پتا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں, تو آپ جو ہیں وہ سفیان ابن عیینہ کی گود میں آپ کا سر تھا, اور آپ کے دونوں قدم جو ہیں وہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی کی گود میں تھے, دونوں خدمت کر رہے تھے حضرت کی, دونوں شاگرد. اور سفیان ابن عیینہ اور فضیل بن عیاض رحمہم اللہ تعالی بھی ٹاپ لوگوں میں سے ہیں امت کے, بہت اعلی درجے کی دونوں. تو باہر جو ہے کسی ندا دینے والے نے ندا شروع کر دی, منادی ہوئی حکومت کی طرف سے کہ وقت کے خلیفہ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہے ہیں دارالخلافہ سے, کیپیٹل سے, اور ابھی پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر میں, اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کی گرفتاری کا وارنٹ ہے. تو جس کے گھر میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ پائے جائیں گے, سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بھی گرفتار ہوں گے, اور وہ دونوں بھی, اور سزا, اور وہ لوگ بھی جن کے گھر میں ہوں گے, اور سب سزا کے مستحق ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ وہ دونوں سن رہے تھے, تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں بھی آواز آ رہی تھی, آرام سے ایسے لیٹے ہوئے تھے, اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے, ایک ایک سانس جو ہے وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی یاد میں رہتا ہے بزرگوں کا. میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا حشیم صاحب دامت برکاتہم سے, میرے بہت کتابیں پڑھی حضرت سے, حضرت سے ابو داؤد شریف بھی پڑھی، موطا امام مالک بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرماوے، ان کی عمر میں برکت دے، عافیتوں والی زندگی نصیب کرے، ان کا روحانی فیضان ہمیں نصیب فرمائے، ہماری طرف سے جزائے خیر دے، اور وقت آخر ولایت کے بہت اونچے مرتبے پر ان کو فائز فرما کر کے اپنے پاس بلائے، بہت خوبیوں کے مالک، بہت خوبیوں کے مالک. تو حضرت مولانا ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم نے اعتکاف کیا تھا، میں اس وقت عربی دوم میں غالباً تھا، عربی اول سے فارغ ہوا تھا یا عربی دوم سے فارغ ہوا تھا، تو باٹلی کی مدینہ مسجد میں حضرت نے اعتکاف فرمایا تھا، تو میں نے بھی اس وقت وہاں حضرت کے ساتھ اعتکاف کیا تھا، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبد الرشید ربانی صاحب مدظ اللہم العالی کی مسجد میں میری اور میرے چھوٹے بھائی مولانا اسماعیل صاحب کی تراوی کا بھی انتظام کیا تھا، تو ہم نے وہاں تراوی بھی پڑھائی تھی تاکہ تراوی بھی ہماری نہ جائے. تو اس وقت حضرت مولانا ہاشم صاحب کبھی کبھی کچھ ارشاد فرماتے تھے، تو اس وقت حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنایا تھا حضرت نے، کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے ایک صاحب گھر سے نکلے، اپنی جگہ سے نکلے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں ملاقات کرنے کے لیے، تو جب نکلے تو راستے میں چلتے چلتے، پرانا زمانہ تھا، تھک جاتے تھے تو کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے تھے، تو اوپر دو پرندے تھے اور دو پرندے آپس میں بات چیت کر رہے تھے. یہ پرندے جو چہچہاتے ہیں یہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں ان کی چہچہاٹ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، تحمید بھی ہوتی ہے. دو پرندے بات کر رہے تھے، اور جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی شانہ نے پرندوں کی اور جانوروں کی بولی سکھائی تھی، تو اللہ جل جلالہ عام منوالو وقتی طور پر کسی انسان پر بھی یہ اس بولی کا انکشاف فرماتی تو کوئی بعید نہیں ہے سبق دینے کے لیے انسانوں کو. تو دو پرندے اوپر بات کر رہے تھے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، تو دوسرے پرندے نے کہا کہ کہاں جا رہا ہے، تو کہ یہ ایسے شخص کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہے. اچھا، کہ مگر تمہیں پتا ہے کہ یہ جن کو ملنے کے لیے جا رہا ہے وہ تو انتقال کر چکے ہیں. اس کو بہت دکھ ہوا کہ میں تو حضرت کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، حضرت کی برکتیں لینے کے لیے جا رہا تھا، حضرت کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کے لیے جا رہا تھا، اور میں محروم ہو گیا. لیکن اس نے سوچا کہ نہیں، پھر بھی جانا چاہیے، چلو دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے حضرت کے جنازے میں شرکت ہو جائے، حضرت کا دیدار ہو جائے، حضرت کے بعد ان کا کوئی جانشین ہو، وہاں کے ماحول کو دیکھیں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے. جب یہ وہاں پہنچے تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو زندہ سلامت تھے، وہاں کچھ دن قیام کیا، حضرت سے استفادہ کیا. جب واپس لوٹنے لگے تو ہمت کر کے کہا کہ حضرت یہاں آتے ہوئے ایک واقعہ پیش آیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں. تو کہ ہاں بالکل بتلائیے. تو اس نے وہ پورا ماجرا سنایا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کون سے دن کی بات ہے، ذرا غور کر کے مجھے بتاؤ، کون سے دن کی، کس وقت کی. تو کہا کہ فنا دن فنا وقت. تو حضرت نے بہت دھیان دیا اور پھر فرمایا کہ ہاں اب مجھے سمجھ میں آیا، یہ وہ وقت ہے جس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا. اور حدیث شریف میں آتا ہے، یہ تو میں عرض کر رہا ہوں، کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ بمنزل زندہ کے ہیں، اور وہ جو یاد نہیں کرتا، اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں، وہ بمنزل مردہ کے ہیں. تو جس وقت تم کو یہ بتلایا گیا کہ میں مردہ ہو گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، یہ اس وقت تھا جب میں ذکر سے غفلت میں پڑ گیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو 24 گھنٹے کا ذکر حاصل ہوتا ہے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ذکر میں ہوں گے، तो जब वो बाहर मुनादी निदा दे रहा था तो उस वक्त ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर इशारा कर रहे हैं कि भाई हजरत की तो गिरफ्तारी का वारंट है, ये बिल्कुल सुकून के साथ आराम से पड़े हुए हैं। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब, जिसका अल्लाह से ताल्लुक हो जाता है न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। इसीलिए जिक्रुल्लाह में अपने आप को खपाओ, जुबान पर जिक्र जारी रहे और अपने शेख से जिक्र के असबाक लेकर धीरे धीरे तरक्की करके जुबानी जिक्र के साथ दिल दिमाग को भी जाकिर बनाओ। इससे इंशाल्लाह दुनिया में भी सुकून मिलेगा, मौत के वक्त भी सुकून, कब्र में भी सुकून, हश्र में भी सुकून, पुल सिरात पर भी सुकून, और फिर जन्नत में तो सुकून ही सुकून है। और इसमें हसर है, कितनी ताकीद है, अला गौर से सुनो, बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब। जब जार मजरूर मुकद्दम हो जाता है तो हसर का माना पैदा होता है कि अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है, दिलों को सुकून मिलता है। तो हजरत लेटे रहे, अदब की वजह से ये दोनों कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर के बाद हजरत उठे अपनी जगह से, अपनी जगह से उठे और उठ करके वुजू फरमाया और वुजू करके सीधा रुख किया हरम शरीफ का, डरे नहीं, घबराए नहीं, छुपे नहीं, रुख किया हरम शरीफ का। और हरम शरीफ का रुख किया, पीछे पीछे ये दोनों खुद्दाम भी हैं, इसलिए कि मोहब्बत जो है वो खालिस थी, ऐसी मोहब्बत नहीं थी जैसी आजकल होती है शागिर्द को उस्ताद से और मुरीद को शेख से, कि जब तक हलवे मिलते रहते हैं वहां तक तो बहुत इश्क है और बड़े मुहिब हैं, और परेशानी आ गई तो भागे, तबीयत के खिलाफ कुछ काम हो गया तो भागे, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। वो पीछे पीछे वो दोनों कहते हैं कि हजरत सीधे गए, तवाफ किया होगा, इसलिए कि मस्जिद हराम का तहिया तवाफ ही है, तवाफ किया होगा, और तवाफ करने के बाद मुल्तजम पर गए और काबे का गिला पकड़ लिया, और काबे का गिला पकड़ के दुआ में मशगूल हो गए और दुआ करते रहे। क्या करते रहे वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। दुआ करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, यहां तक के जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो धीरे 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 वो खबर फैलते 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 मस्जिदों में भी आ जाती है, तो हरम शरीफ में भी आ जाती है। और अगर खलीफा का इंतकाल हो जाए तो ये खबर पहुंची कि खलीफा जो अभी मक्का मुकर्रमा आ रहे थे रास्ते में उनका इंतकाल हो गया है। इस दर्जे के आदमी थे सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे ईमान के बारे में, वो ये फरमाते थे कि मैं गुनाह तो है मेरे पास, इसलिए कि जो भी बड़े लोग होते हैं वो अपने आप को गुनहगार समझते हैं, वो अपने आप को कोताह समझते हैं, उनके जहनों में ऐसा होता है कि हमें जैसी नमाज पढ़नी चाहिए थी हम नहीं पढ़ सके, जैसा अल्लाह का जिक्र करना चाहिए नहीं कर सके, तो अपने आप को कोताह समझते हैं। तो वो ये फरमाते थे कि गुनाह तो बहुत है, लेकिन वो गुनाह अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मगफिरत के मुकाबले में एक तिनके के बराबर भी नहीं है। जमीन से तिनका उठाकर बताएगी, इस तिनके की हैसियत भी, गुनाहों की हैसियत इस तिनके जितनी भी नहीं है। तो कहा कि गुनाहों से तो मैं नहीं डरता, इसका मतलब है कि अल्लाह रहमत वाला है, मगफिरत वाला है। बस इतना हो जाए कि अल्लाह ईमान पर मौत दे दे, ईमान पर मौत दे देगा अल्लाह। अगर ईमान पर मौत दिया अल्लाह ने तो फिर आगे वाला मसला तो आसान हो जाएगा, उसकी मगफिरत और रहमत की चादर में लपेट कर गुनाहों को तो माफ कर देगा। ईमान इतनी कीमती चीज है। तो ईमान का मरकज दिल, और फिर ईमान की आबियारी करने वाली जितनी भी चीजें हैं, ईमान को स्ट्रांग करने वाली, ईमान को मजबूत करने वाली, ईमान को कवि बनाने वाली जितनी भी चीजें हैं, उनका मरकज भी दिल। जैसे मिसाल दी के सब्र, शुक्र, इखलास, अल्लाह की मोहब्बत का मरकज भी दिल, अल्लाह की मोहब्बत का मरकज भी दिल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मरकज भी दिल, پھر توکل کا مرکز بھی دل، رضا و تسلیم، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، یہ اس کا مرکز بھی دل. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سے تعلق رکھنے والی جتنی محبتیں ہیں، کعبے سے محبت، قرآن سے محبت، مسجد سے محبت، ان سب کا مرکز دل. یہ دل کتنا قیمتی ہے، اتنی عمدہ عمدہ چیزوں کا مرکز ہے، اور اللہ نے اس دل کو بنایا ہی ان ساری چیزوں کے لیے. گھر سانپ کے لیے نہیں بنایا جاتا، گھر کیڑوں مکوڑوں کے لیے نہیں بنایا جاتا، گھر مکڑیوں کے جالوں کے لیے اور مکڑیوں کے لیے نہیں بنایا جاتا، گھر چوہوں کے لیے نہیں بنایا جاتا، گھر کتوں کے لیے نہیں بنایا جاتا، گھر گندگی کے لیے نہیں بنایا جاتا. لیکن ہم اگر اس گھر کو، گھر جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، اشرف المخلوقات کے لیے ہے، محل اشرف المخلوقات کے لیے ہے، لیکن گھر کو ہم اشرف المخلوقات سے اور انسان سے آباد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں کون بسنا شروع کر دے گا؟ کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، کتے، بلیاں، چوہے، جانور. اور وہ گھر پھر گھر نہیں رہے گا، وہ محل محل نہیں رہے گا. اس گھر میں جب جائیں گے تو انس اور اطمینان اور سکون محسوس نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کیا محسوس ہوگا؟ وحشت محسوس ہوگی. گھر کو سکن کہتے ہیں، سکن. جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. مسکن، سکن، سکون کی جگہ. تو اسی طرح اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے دل کو ایمان کے لیے بنایا ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے والے اخلاق اور اوصاف اور خصلتوں کے لیے بنایا ہے. لیکن اگر اس میں ہم ایمان کو نہیں بسائیں گے، ایمان کو نہیں بسائیں گے، اور ایمان کو طاقت پہنچانے والے جو اوصاف ہیں، صبر، شکر، یقین، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے اگر اس کو آباد نہیں کریں گے دل کو، تو ظاہر ہے کہ اس میں کیڑے مکوڑے آ جائیں گے. اور کیڑے مکوڑے یہی کہ کفر آ جائے گا، شرک آ جائے گا، بدعتوں کی محبت آ جائے گی، گناہوں کی محبت آ جائے گی، ناجائز چیزوں کی محبت آ جائے گی، اللہ کے نافرمانوں کی محبت آ جائے گی. پھر ریا کی جگہ پر، یہ اخلاص کی جگہ پر ریا آ جائے گی، صبر کی جگہ پر بے صبری، شکر کی جگہ پر ناشکری. اور یہ دل جو ہے پھر سکون کا مرکز نہیں رہے گا، یہ بے سکونی کا مرکز ہو جائے گا، وحشت ہوگی. اسی لیے دنیا بھر میں آج جو لوگ کہتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں، بے قراری ہے، سکون نہیں، بے قراری ہے، سکون نہیں، بے قراری، بھائی کیوں؟ تو اس کے ریزن کچھ معلوم نہیں ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں ہے. پیسے بھی ہیں، دولت، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب فرما بردار بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بے سکونی کیوں ہے؟ یہ بے سکونی اس وجہ سے، بے سکونی اس وجہ سے ہے کہ اس میں وحشت والی چیزیں آ گئی ہیں، اور ان وحشت والی چیزوں کے آ جانے کی وجہ سے پھر وہ دل دل نہیں رہتا. پھول پلاسٹک کا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں ہوتا، حالانکہ وہ پلاسٹک کا پھول اور باغ والا پھول دونوں ایگزیکٹلی سیم نظر آتے ہیں، بلکہ وہ پلاسٹک والا زیادہ خوبصورت نظر آئے گا، مگر اسے کوئی پھول نہیں کہے گا. پھول، بناوٹی چیز کو کوئی پھول نہیں کہتا. تو وہ دل جس میں اللہ ہو، اور اللہ سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ہوں، متعلقات ایمان، ایمان اور متعلقات ایمان، اللہ کی محبت اس میں ہو، اللہ کی یاد اس میں ہو، تو وہ دل دل ہے. اور اگر اللہ کی محبت نکل جائے، ایمان نکل جائے، صبر نکل جائے، شکر نکل جائے، اخلاص نکل جائے، یہ جو اچھے اچھے اوصاف ہیں وہ نکل جائے، تو لوتھڑا تو ہے دل، جسے ہم ہارٹ کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، لیکن یہ بناوٹی دل ہے، یہ فیک دل ہے. जैसे वो फेक फूल, वो गुल गुल नहीं जिसमें बू नहीं, वो गुल गुल नहीं, गुल फूल को कहते हैं, वो गुल गुल नहीं, दैट फ्लावर इज नॉट फ्लावर, वो गुल गुल नहीं जिसमें बू नहीं, विच हैज नो फ्रेग्रेंस, इसी के वो बनावटी है, वो गुल गुल नहीं जिसमें बू नहीं, वो दिल दिल नहीं जिसमें तू नहीं, वो दिल दिल कहलाने के काबिल नहीं जिसमें अल्लाह नहीं होता। और अल्लाह किस दिल में होता है? जहां ईमान हो, और ईमान के साथ जहां अखलाक फाजिला हो, अच्छे अच्छे अखलाक हो। ये जो जितने सांप बिच्छू अंदर दाखिल हो जाते हैं, नाशुक्री, बेसब्री, हसद, कीना, बुग्ज, बुख्ल, तकब्बुर, ये अखलाक रजीला है, अखलाक रजीला घटिया, अखलाक फाजिला, फजीलत वाले अखलाक, फजीलत वाले अखलाक जब दिल में आते हैं तो वही इंसान फजीलत वाला हो जाता है, और घटिया अखलाक जब दिल में आ जाते हैं तो वही इंसान भी घटिया हो जाता है। पहले अल्लाह की नजर में घटिया बनता है, फिर अल्लाह की मखलूक की नजर में भी घटिया बन जाता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों और मेरी माओ, मेरी बहनों, कि ये दिल जो है बहुत कीमती शय है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। मगर ये जैसे घर गधों के लिए नहीं बनाया जाता, घर गुणों के लिए नहीं बनाया जाता, घर कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए नहीं बनाया जाता, घर कीड़ों मकोड़ों के लिए और सांप और बिच्छुओं के लिए नहीं बनाया जाता, इंसानों के लिए बना। लेकिन इंसान अगर उसमें नहीं रहेगा तो घर आबाद नहीं, उसको इनहैबिटेबल घर कहते हैं। अरे भाई, आप इनहैबिटेबल कह रहे हैं, अंदर इतने सारे जानवर रहते हैं, पहले सिर्फ 5 इंसान रहते थे, अब दर्जनों अंदर चूहे रहते हैं, और आप कहते हैं इनहैबिटेबल, नहीं, उसको हैबिटेबल कोई नहीं कहेगा, इनहैबिटेबल। तो वो दिल जिसमें ईमान न हो, या ईमान तो है मगर अखलाक हमीदा न हो, उसको आबाद दिल नहीं कहते, आबाद नहीं कहते, वो वीरान दिल है, वीरान वीरान दिल है। और फिर मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु का कलाम जिसे हम अपनी जुबानों से पढ़ते हैं और उसे जब हिफ्ज करते हैं तो ये कहां महफूज होता है? किस कंप्यूटर में महफूज होता है? ये दिल के कंप्यूटर में महफूज होता है। ये दिल कितना कीमती है, दिल कितना कीमती है। जिस दिल में ईमान हो, जिस दिल में कुरान हो, जिस दिल में इश्क इलाही हो, जिस दिल में मोहब्बत नबवी हो, जिस दिल में अखलाक हमीदा हो, और जो दिल अखलाक रजीला से पाक हो, दिल चाहता है कि ऐसे दिल को चूमे और बार बार चूमे। अब ये जो दिल है, ये दिल, ये कीमती कैसे बनता है? कीमती का मतलब उसमें ईमान कैसे आता है, और ईमान महफूज कैसे रहता है, और इसमें अखलाक फाजिला किस तरह आते हैं, अखलाक रजीला कैसे निकाले जाते हैं उसमें से, बस उसी का नाम तज़किया है, उसी का नाम तज़किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं थी कि यतलु अलैहिम आयाती ही, आप उनके सामने कुरान मजीद की आयत की तिलावत फरमा दें, कि अल्लाह फरमाते हैं कि अकीम उस्सला व आतु ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो और फिर छुट्टी। यतलु अलैहिम आयाती ही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, आपकी ये भी जिम्मेदारी थी कि नहीं, उनको किताब और हिकमत सिखाएं, यानी जिस किताब की तिलावत आप कर रहे हैं उनके सामने, उसकी तफसीर भी उनको बतलाएं। पर आपने तफसीर बतलाई हदीस की शक्ल में, और जो हदीस आप बतला रहे हैं उस हदीस की भी तशरी करके दिखाएं, अमली तशरी करें, और एक हदीस के जरिए दूसरी हदीस की तशरी। तो आपने उम्मत के सामने कुरान मजीद की आयात तिलावत भी की ताकि आयात मुंतकिल हो गई, और उनको फिर कुरान सिखाया, और कुरान सिखाने के बाद फिर उनको हदीसें भी सिखाई, यानी हदीसों में जो अहकाम वारिद हुए हैं और कुरान में जो अहकाम वारिद, वो सिखाए कि कैसे किए जाते हैं, اور پھر فرمایا کہ سلو کما رائی تم انہیں وسلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو. حج کے موقع پر کہ خود انی مناسککم، یہ حج کے مسائل مجھ سے لو، میں تم کو سکھاؤں گا. اب جو لوگ تصوف کے قائل ہی نہیں ہیں، جو لوگ کسی مربی اور کسی شیخ کے قائل ہی نہیں ہیں، تو ان کو تو یہی رک جانا چاہیے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ کا ایک اور ذمہ داری بھی، اور وہ ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، تزکیہ کریں. یتلو علیہم آیاتہ کا کام جو ہے وہ ہمارے مکتبوں میں ہوتا ہے، اور مکتبوں میں ہلکے پھلکے انداز میں تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت بھی ہوتی ہے، مسائل سکھا دیے جاتے ہیں جو کہ مقتبس ہے قرآن اور حدیث سے. اور ہمارے جامعات میں دارالعلوموں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. اور خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ، تزکیہ کا معنی دلوں کو صاف کرنا. دلوں کو صاف کرنا نمبر ایک کفر سے صاف کرنا، نمبر دو شرک سے صاف کرنا، نمبر تین نفاق سے صاف کرنا، اور اس کے بعد ان رذائل سے صاف کرنا. اب ظاہر ہے کہ مکتب میں جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ نے آج تک ایسا کوئی مکتب دیکھا کہ جس میں استاد نہ ہو؟ بغیر استاد کے مکتب چل رہا ہے اور تلاوت آیات کا کام ہو رہا ہے. آپ نے آج تک ایسا کوئی دارالعلوم دیکھا، ایسی کوئی اسلامی یونیورسٹی دیکھی کہ جس میں تعلیم کتاب و حکمت کا کام ہو رہا ہے بغیر ٹیوٹر کے، بغیر معلم کے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تالیہ آیات بھی تھے، اور آپ معلم کتاب و حکمت بھی تھے، اور آپ مزکی بھی تھے، اور آپ جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو کیا آپ کے تشریف لے جانے کے بعد تلاوت آیات کرنے والے تو موجود ہیں مکتبوں کے اندر اور مدارس کے اندر، کتاب اللہ اور سنت کو سکھانے والے بھی موجود ہیں، تو تزکیہ کرنے والے کیوں نہیں ہو؟ جب نبی ہی نہیں آنے والا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام کون کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ جس طرح مکاتب میں اساتذہ ہیں مدرسوں میں، ایوننگ مدرسوں میں، مکتبوں کے اندر، اور جس طرح بڑے بڑے مدارس کے اندر معلمین ہیں جو حدیث سکھاتے ہیں، تفسیر سکھاتے ہیں، اسی طرح تزکیہ کے شعبے کے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مزکی حضرات بنائے ہیں، اور ان کو شیوخ کہا جاتا ہے، مشائخ کہا جاتا ہے، ان کو شیخ کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں، اور ہماری اپنی زبان میں پیر کہتے ہیں. جیسے صلات عربی میں کہتے ہیں، ہماری زبان میں نماز کہتے ہیں، صوم عربی میں کہتے ہیں، ہماری زبان میں روزہ کہتے ہیں. تو شیخ ہی کو ہماری زبان میں پیر کہتے ہیں. یہ پیر کوئی باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے. تو تزکیہ، تو تزکیہ کے ذریعے دلوں کی حالت درست ہوتی ہے. جیسے ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے اسے شبہ ہو گیا. کیا شبہ ہو گیا؟ کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد التحیات کی بجائے کھڑا ہو گیا. اب اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤں یا کھڑا رہوں، بیٹھ جاؤں یا کھڑا رہوں. اب یا تو بیٹھ گیا دوبارہ، بالکل کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، یا یہ کہ کھڑا ہی رہا اور باقی دو رکعت اس نے پوری کر لی. اب نماز کے بعد اسے شبہ ہوا. کیوں شبہ ہوا؟ اس لیے کہ یہ اس فن میں ماہر نہیں ہے. تو اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ مفتی کے پاس جائے گا، کسی عالم کے پاس جائے گا کہ آج نماز میں ایسا ہو گیا، تو صحیح ہوا یا غلط؟ تو مفتی صاحب کہیں گے کہ نہیں، غلط ہوا، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، سجدے سہو تم نے کر لیا کہ نہیں، اس کی رہنمائی ہوگی اور اس کی نماز کو وہ درست کرے گا. تو ظاہری اعمال اتنے مشکل نہیں ہیں جتنے دل کے اخلاق. دل میں اگر ریا آ جائے تو ریا ہے یا نہیں؟ میرا یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہوا یا نہیں؟ تو جب ظاہری اعمال جو اتنے مشکل نہیں ہیں ان کے لیے کسی مفتی کے پاس جانا ضروری ہے، تو کیا باطنی اعمال جو بہت باریک ہیں، بہت دقیق ہیں؟ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تصوف جو ہے، تصوف یعنی احسان، سلوک، تزکیہ، یہ تزکیہ کا کام جو ہے یہ شاہی فن ہے، شاہی فن، شاہی علم ہے. شاہی، یہ ریگل علم ہے، ریگل رویل علم ہے، اور رویل لوگ نازک مزاج بہت ہوتے ہیں، باریک بہت ہوتی ہے، ان کی مرضی کیا ہے کیا نہیں سمجھ میں نہیں آتا جلدی، کس رخ پہ جا رہے ہیں بادشاہ. تو جب ظاہری اعمال کے لیے ہم سب اس کے قائل ہیں کہ اگر کسی جگہ شبہ ہو جائے تو مفتیوں کے پاس جانا چاہیے اور مفتیوں سے پوچھ کر کے اپنے ظاہری عمل کو درست کرنا چاہیے، تو باطنی عمل میں اگر شبہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی کوئی ایکسپرٹ ہوگا یا نہیں؟ اس کے لیے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، جیسے مفتی اس نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، 6-8 سال میں عالم بنا ہے، اس کے بعد 1-2 سال تک کسی مفتی کی صحبت میں رہا ہے، اور اس کے بعد پھر خود کسی اور مفتی کی سرپرستی میں رہ کر کے دارالافتاء کا کام کئی سالوں تک کیا ہے، تب اسے گرفت آتی ہے. تو اسی طرح یہ باطنی امور کے لیے بھی کسی سے بیعت ہوتا ہے، بیعت ہو کر کے، بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، بیعت ہونا سنت ہے، مگر اپنا تزکیہ کرانا فرض ہے. تو اس نے اپنے تزکیہ کی محنت کرائی ہے، محنت کرانے کے بعد شیخ کا اعتماد حاصل کیا اور شیخ نے اسے اجازت دی، اور اس کے بعد بھی پھر یہ اسی کام میں لگا رہا، اور امت کے جو مشاہیر ہیں یا امت کے جو معتمد لوگ ہیں وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس فیلڈ میں ہمارا بھی اعتماد اسے حاصل ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا. اس لیے کہ باطن کی جو چیزیں ہیں بہت باریک ہے، بہت باریک ہے، بہت باریک ہے. ایک ہے توازو اور ایک ہے ذلت نفس. توازو جو ہے وہ ضروری ہے، واجب ہے، توازو ضروری ہے، اور ذلت نفس حرام ہے. مگر دونوں بہت باریک ہے کہ میں ذلت نفس میں مبتلا ہوں یا توازو ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ذلت نفس میں مبتلا، اس وقت دونوں کو سمجھانے کا موقع نہیں ہے، میں تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک طرف ذلت نفس ہے جو کہ حرام، اور دوسری طرف توازو. اب توازو جو ہے وہ ایک بہت اعلی درجے کا خلق، تو اس کو تو حاصل کرنا واجب ہے، اور ذلت نفس اپنے آپ کو ذلیل کرنا، خود کو ذلیل کرنا، ایک حد تک خود کو عزت میں رکھنا چاہیے. تو ان دونوں میں بہت باریک فرق ہے. تو انسان ذلت نفس میں مبتلا ہو کر کہیں ایسا نہ سمجھتا رہے کہ میرے پاس توازو ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ توازو ہو اس کے پاس اور وہ ایسا سمجھتا رہے کہ میں کہیں ذلت نفس میں مبتلا نہیں ہوں. تکبر اور عزت نفس، عزت نفس واجب اور تکبر حرام. اب ہو سکتا ہے کہ تکبر میں مبتلا ہو اور ایسا سمجھ رہا ہو کہ عزت نفس یہ تو ضروری ہے میرے لیے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عزت نفس ہے مگر ایسا سمجھ رہا ہو کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں. باریک چیزیں، باریک چیزیں. ایک ہے تعلی، بڑائی، میں کچھ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، حرام. اور دوسرا تحدیث نعمت، تحدیث بن نعمت، نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. تو ایک تو ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں یوں ہوں اور میں یوں ہوں اور میں چنا ہوں اور میں چنی ہوں، اور ایسا سمجھے کہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، حالانکہ وہ تعلی میں مبتلا ہے، بڑائی میں مبتلا ہے. تو پتہ نہیں چلے گا کہ میں تحدیث بن نعمت کا کام کر رہا ہوں یا تعلی میں مبتلا ہوں. اور ذرا غفلت ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی احساس نہیں رہتا کہ تحدیث بن نعمت ہے یا تعلی ہے، اتنا باریک ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی، ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھ کر واعظ فرما رہے ہیں، اور حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں آپ حضرات کو ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے سنی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کسی اور سے سنو گے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے مجھے ایک خاص علم عطا فرمائی، ایک خاص چیز، قرآن اور حدیث ہی سے مقتبس ہوتی ہے یہ چیزیں، ایک خاص چیز مجھے عطا فرمائی. اب ظاہر میں یہ بڑائی ہے نا کہ گویا مجھے اللہ نے ایک ایسا علم عطا فرمایا ہے جو اب تک کسی کو نہیں ملا ہے اور آئندہ بھی کسی کو نہیں ملے گا. مگر حضرت نے فرمایا کہ یہ بات میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تحدیث بن نعمت کا کیا معنی ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ دوسروں کے سامنے صرف اس لیے کسی बात को बयान करता है कि दूसरों को पता चले कि मेरा अल्लाह मेरे ऊपर बहुत करम नवाजी कर रहा है। एक बाप जो है, एक उस्ताद एक शागिर्द, अपने एक बाप एक उस्ताद अपने बेटे या अपने शागिर्द पर शफकतों की बारिशें बरसाए और वो कभी किसी के सामने जिक्र न करे, तो बाप का भी दिल दुखता है, उस्ताद का भी दिल दुखता है। तहदीस बिन नेमत का मतलब ये कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो निकम्मा हूं, लेकिन मेरे अल्लाह का कर्म है और मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मेरा अल्लाह कितना करम नवाजी कर रहा है मेरे ऊपर, ये अल्लाह का हक है मेरे ऊपर। यह है तहदीस बिन नेमत। वा अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अपने परवरदिगार की नेमत को बयान कीजिए आप, ये हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो एक है तहदीस बिन नेमत। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं बड़ाई नहीं मार रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा कि मुझे ऐसा इल्म अता हुआ है जो इससे पहले आपने किसी से नहीं सुना और मुस्तकबिल में नहीं सुनोगे, मैं ये बात तहदीस बिन नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूं। और मैंने अभी अभी क्या कहा, ये तहदीस बिन नेमत और ताली बड़ाई दोनों में बहुत बारीक फर्क है। इतना बारीक फर्क कि इस मौके पर हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह को भी लग्जिश हो गई, वो फर्क न कर सके कि मैं इस वक्त तहदीस बिन नेमत के तौर पे ये बात कह रहा हूं या ताली के तौर पे कह रहा हूं। लेकिन हकीमुल उम्मत थे, तबीबुल उम्मत थे, ये हजरात अपने नफ्स पर बार बार निगाह डालते हैं तो जरा गफलत हो गई तो नफ्स अपना काम कर गया, अपनी बड़ाई बतला करके उसने लज्जत हासिल कर ली। लेकिन हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी थी नफ्स पर, तो फौरन पकड़ लिया, पर फौरन पकड़ लिया और समझ गए कि तहदीस बिन नेमत का तो बहाना है, मैं तो बड़ाई बयान कर रहा हूं, ये तहदीस बिन नेमत नहीं है। तो फौरन वहां इस्तिग़फार शुरू कर दिया मिंबर पर बैठकर मजमे के सामने, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मेरे भाइयों, इस वक्त हो सकता है कि कई अहले इल्म भी ये बात सुन रहे हों और पहले भी आप हजरत ने ये बात सुनी होगी, अहले इल्म ने क्यों नहीं सुनी होगी। मेरी सब हजरत से ये 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 दरख्वास्त है कि गौर करें कि हम लोग इस किस्म की ताली में मुबतला होते हैं तो अव्वल देखे हमें पता ही नहीं चलता कि हम ताली में मुबतला हैं, गुजर जाते हैं। और अगर ताली का पता चल जाए तो ये जुरत मेरे और आपके पास है कि हम मजमे के सामने ये कहें, और हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मर्तबे पर होते तो और मुश्किल होता, इतना बड़ा आदमी, और वो एतराफ करे कि मैंने तहदीस बिन नेमत का तो गोया यूं समझो कि एक ऐसे ही ढोंग था, असल मकसद तो क्या था मेरा ताली। तो अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और फिर आपने फरमाया कि तौबतुल अलानियत बिल अलानिया तौबतुस सिर्र बिस सिर्र, अगर तन्हाई में गुनाह हो जाए तो तन्हाई में तौबा कर लो, सबके सामने गुनाह हो जाए तो सबके सामने तौबा करो। तो मैं तौबा कर रहा हूं अल्लाह से कि मैंने तुमको जो ये कहा कि ये जो बात मैंने कही कि एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो तुमने कभी सुनी नहीं होगी, आइंदा भी नहीं सुनेंगे, और ये मैं सिर्फ तहदीस बिन नेमत के तौर पे कह रहा हूं जो कि बहुत अच्छी खसलत है, और ताली जो कि नाजायज है हराम है। तो क्या तहदीस बिन नेमत नहीं थी बल्कि क्या था, ताली थी। देखो कितनी बारीक चीज। तो इतने बारीक आमाल है दिल के जिनको हम फजाइल और रजाइल कहते हैं, तो क्या उनके लिए शेख की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेख की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि नंबर एक हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता कि बीमारी है या खूबी है, खूबी है या बीमारी है, ये पता ही नहीं चलता। और नंबर दो, अगर पता चल जाए तो हो सकता है कि खूबी को बीमारी समझ जाए, बीमारी को खूबी, अव्वल देखे है क्या है वही पता नहीं, और अगर है तो हो सकता है, और अगर हमें पता चल गया कि खूबी ही है या बीमारी ही है तो ऐसे मौके पर करना क्या है, बीमारी है तो निकालना कैसे है, ये कोई पाखाना या पेशाब थोड़ा है कि नल के नीचे जाकर के पानी बहा करके इसको तीन मरतबा रगड़ कर धो लो और निचोड़ दो। ये तो हसद तो दिल में है, बुक्स तो दिल में है, कीना दिल में है, नाजायज मोहब्बत दिल में है, कैसे निकालें, उसके लिए शेख के पास जाना पड़ता है और शेख तरीका बतलाता है। इसलिए शेख जरूरी है। तो एक मकतब में अलिफ बा तासा के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, कायदे के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, कुरान और तालीमुल इस्लाम और बेहश्ती जवर जेवर और बेहश्ती समर के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, और फिर ऊपर जाकर जामियात के अंदर हदीस और तफसीर और फिक्र और उसूल फिक उसूल तफसीर उसूल हदीस और उलूम और फनून के लिए उस्ताद की जरूरत होती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर पीएचडी और एमए के लिए मुशरिफ की और सुपरवाइजर की जरूरत होती है। तो क्या एक तज़किया का काम ही ऐसा रह गया है कि जिसके लिए किसी की जरूरत नहीं है? इसके लिए भी जरूरत होती है शेख की, और शेख से बैयत होना जरूरी नहीं है। दो तरीके हैं, एक है बैयत होना और दूसरा है इस्लाही ताल्लुक रखना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो बैयत होना सुन्नत है, अगर कोई बैयत होता है तो उसकी बरकतें और ज्यादा हो जाती हैं, और बैयत होता है मगर इस्लाह नहीं कराता तो उसने सुन्नत का काम कर लिया और वो फर्ज नहीं अदा कर रहा है। और एक शख्स जो है किसी से बैयत नहीं होता मगर इस्लाही ताल्लुक रखता है और उससे कमिट हो जाता है कि आप ही से मेरा ताल्लुक रहेगा और बैयत हुए बगैर अपना इस्लाह कराता है, तो वो जो है सुन्नत की बरकत से तो महरूम रहेगा लेकिन उसकी वो फर्ज का काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक शख्स जो है उसने कसम खाई कि आज मैंने अगर फजर की नमाज न पढ़ी तो तुझे तलाक, बीवी से कहा, और मस्जिद में जाकर के फजर की दो रकअत सुन्नत पढ़कर के घर आ गया। हजरत फरमाते थे कि तलाक हो गई कि नहीं? सब कहेंगे कि तलाक हो गई, इसे के फर्ज नहीं पड़े तो कैसे हुआ? और दूसरा आदमी जो है वो मस्जिद में जाता है सुन्नते नहीं पढ़ता मगर फर्ज पढ़ लेता है, तलाक होगी कि तलाक नहीं होगी? मालूम है कि असल फर्ज है। और दोनों काम अगर कर ले तो नूर नला नूर। और ये रजाइल जो है, ये रजाइल बातिन के रजाइल जो होते हैं, इन रजाइल के होते हुए ये जैसे एक घर है जो इनहैबिटेबल है, उसमें इंसान नहीं रहते, तो वो घर जो है धीरे 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 जो है वो रन डाउन होता है। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेरेलिक्ट या क्या कहते हैं, वो घर डेरेलिक्ट हो जाता है और टूट भी जाता है, गिर भी जाता है, छत भी गिर जाती है, प्लास्टर उखड़ जाता है। ये अल्लाह का एक निजाम है, अंदर जब लोग रहते हैं तो कुछ नहीं होता लोग। तो इसी तरह अगर ईमान है भी और दिल में ये जो सारे रजाइल हैं वो साफ नहीं हुए तो ईमान की दीवार गिरेगी, ईमान की छत गिरेगी, ईमान खतरे में है। तो ये जो ईमान के बारे में हम कहते हैं ना कि मेरा ईमान बहुत ताकतवर हो गया, मेरा ईमान कमजोर हो गया, मेरा ईमान कमजोर हो गया, मेरा ईमान कवि हो गया, इसकी वजह ये है कि बातिन हमारा दुरुस्त नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बातिन दुरुस्त तो नहीं है मगर माहौल की वजह से वक्ती तौर पर हमें ऐसा लगता है, जैसे 40 दिन जमात में चले गए तो 5 दिन 10 दिन में लगेगा कि भाई बहुत माशाल्लाह, और वापस आने के बाद 5-10 दिन के बाद फिर जहां थे वही। उमरे के लिए हज के लिए गए तो वहां बहुत अच्छे, वापस आए तो फिर जहां थे वही। एतिकाफ में रमजान में बैठ गए 20 दिन 15 दिन बहुत अच्छे, वापस जहां थे वही। जब तक मेरे भाइयों ये दिल में आबादी नहीं होगी वहां तक कैफियत दिन की ही रहेगी। ये करना पड़ेगा, ये तज़किया दिल का। अब सवाल यह है कि फिर ये रमजान में क्यों एकदम और जमात में क्यों एकदम जोर शोर से चल रहे थे? तो जवाब यह है कि वह माहौल मदद कर रहा था। माहौल, तो माहौल कब तक मदद करेगा आपको? पूरी जिंदगी तो जमात में रह नहीं सकते, पूरी जिंदगी तो हरमैन शरीफन में रह नहीं सकते, पूरी जिंदगी तो खानका में रह नहीं सकते। दिल को ऐसा बना लो कि माहौल जो काम करता है वो दिल करे। तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि एक गाड़ी है उसका इंजन गया हुआ है, इंजन गया हुआ है, और उसको आपने दूसरी गाड़ी के साथ बांध दिया तो आगे वाली गाड़ी तो बिल्कुल तंदुरुस्त है और पीछे वाली गाड़ी मरीज है, मगर जितनी स्पीड से आगे वाली गाड़ी चलेगी उतनी ही स्पीड से पीछे वाली चलेगी, और जब उससे अलग कर दोगे तो बेचारी जहां खड़ी थी वहीं। तो जब हम हमारी अपनी गाड़ी को 40 दिन के लिए तबलीग जमात के साथ बांध देते हैं तो हमारी गाड़ी भी चल पड़ती है, 2 हफ्ते के लिए उमरे के साथ बांध देते हैं तो हमारी गाड़ी भी चल पड़ती है, 10 दिन के लिए एतिकाफ के साथ बांध देते हैं तो हमारी गाड़ी भी चल पड़ती है, और जहां गाड़ी को छोड़ा तो जहां खड़ी थी वही। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम मेहनत करें और मेहनत करके अपने आप को किसी शेख के हवाले करें। आज दोनों बातें मालूम हो गई, तज़किया की जरूरत भी मालूम हो गई और तज़किया के लिए मुअल्लिम की जरूरत भी मालूम हो गई। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो बगैर मुरब्बी के होता है, कोई काम ऐसा नहीं है। बढ़ई का काम, बढ़ई का ये लकड़ियों कारपेंटरिंग का काम बगैर उस्ताद के नहीं हो सकता, टेलरिंग का काम बगैर उस्ताद के नहीं सीख सकता। कोई भी काम हो दुनिया का, कोई भी काम हो, उसके लिए शॉर्ट कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज, जैसा जैसा काम वैसा वैसा कोर्स। तो जब ये सारे काम, कोई काम ऐसा नहीं जो मुदर्रिस के बगैर हो सकता है, तो सिर्फ ये एक दिल का काम रह गया है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, जिसका ताल्लुक बातिन के साथ है, असरार के साथ है। अल्लाह ताला शानू हमारी हमें तौफीक अता फरमाए, इसकी अहमियत हमें नसीब करे। और जो लोग किसी शख्स से बैत हो गए हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि बैत होने का मकसूद असली जिक्रुल्लाह नहीं है कि शेख से बैत हो गए, जिक्र सीख लिया और हो गया हमारा काम। ना, बैत और तसव्वुफ का मकसूद असली जिक्रुल्लाह नहीं है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि बैत का मकसूद असली क्या है, बैत का और तसव्वुफ का मकसूद असली क्या है, जिक्रुल्लाह। तो जिक्र मिल गया, अब जिक्र करते रहो, वजीफे पढ़ते रहो, ये मकसूद असली नहीं है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि बैत इसलिए हो रहे हैं कि इनसे हमें रूहानी इल्म मिलेगा। और रूहानी इल्म का क्या मतलब, तावीज गंडे। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, उसके लिए नहीं है। इसका मकसूद असली एक ही है कि दिलों का तज़किया हो जाए, दिलों से रज़ाइल निकल जाए और दिलों में फ़ज़ाइल आ जाए, बुरे अखलाक निकल जाए, अच्छे अखलाक आ जाए और दिल हकीकी माने में दिल हो जाए। इसलिए कि गंदगी निकल जाएगी और ये डेकोरेट और अडोन और मुजैन और आरास्ता हो जाएगा ये दिल, तो ये दिल अल्लाह का घर बन जाएगा। फिर उसमें अल्लाह की तजल्लियात उतरेगी, अल्लाह की तजल्लियात उतरेगी। और इसके लिए शेख कामिल की जरूरत है, जिसका अकीदा दुरुस्त हो, जिसने मशाइख के हक्का में से किसी की सोहबत या किसी की रहनुमाई में अपना सुलूक तय किया हो, अपना तज़किया कराया हो, उस पर मौजूदा जमाने के अच्छे अच्छे उलमा और अच्छे अच्छे शुयूख का एतिमाद हो, अच्छी नजर से देखते हो और वो सीधे रास्ते पर हो, अकीदा भी दुरुस्त हो, बिदत रसूम से दूर रहने वाला हो और दाएं बाएं आगे पीछे उसके जो लोग हैं वो भी दीन की फिक्र रखने वाले हों और उसकी मजलिस में बैठकर अल्लाह याद आता हो, उसकी बातें सुनकर अल्लाह याद आता हो, फिक्र आखिरत और फिक्र इसलाह पैदा होती हो, अपने उयूब नजर आने लगते हों, तो ऐसे शख्स से अपने आप को वाबस्ता करना चाहिए। और वाबस्ता करके फिर उसकी सोहबत में बैठे, और सोहबत में ऐसे ही बैठना मकसूद नहीं होता, उसको देखने की नीयत से जाए कि मैं इनके आमाल को देखूं, देखने के उनके आमाल को देखूं, और बैठे उसके पास बैठे। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातु हमने मिसाल दी है कि अगर किसी से ये कहा जाए कि गुड़ भी मीठा होता है, गुड़ मोलासिस या क्या कहते हैं उसको, गुड़, तो गुड़ जो है वो भी मीठा होता है। और चलो मैं मुफ्ती साहिब की मिसाल को जरा अलग करके दूसरी मिसाल दूं कि बादाम बर्फी भी मीठी होती है, केक भी मीठा होता है, बर्फी भी मीठी होती है, हलवा भी मीठा होता है और आम भी मीठा होता है। अब किसी से आप ये कहें, बड़े से बड़े, हजरत फरमाते हैं बड़े से बड़े माहिर राइटर, बेहतरीन फसाहत व बलागत का मालिक, उससे कहा जाए कि इन चारों की मिठास में फर्क आप जरा अल्फाज में मुझे बतलाइए, तो नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। करना क्या पड़ेगा, उन चारों को खाना पड़ेगा। ये मिसाल मैंने अपनी तरफ से दी, हजरत ने गुड़ और आम की मिसाल दी है, तो खुद करना पड़ेगा। जब खाएंगे तो खाने के नतीजे में पता चल जाएगा कि अच्छा ये चार फर्क है, और खाने वाला भी फिर किसी को बतला नहीं सकेगा कि इन चारों में फर्क किया है, चारों में फर्क किया है। इसीलिए अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है कि इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन का क्या माना है। ये तीन इस्तिलाहात है, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन। तो अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह ने जो समझाया है वो मैं आम की मिसाल के साथ खुद अपने अल्फाज में समझा रहा हूं कि आपने किसी किताब में पढ़ लिया कि इंडिया में एक फल होता है जिसे मैंगो कहते हैं और वो बहुत मीठा होता है, बहुत लजीज होता है, तो आपके दिल दिमाग में मिठास तो आई। ये हो गया इल्मुल यकीन, इल्मुल यकीन। लेकिन अभी वो मिठास हक्कुल यकीन के दर्जे तक आप नहीं पहुंचे, फिर आप इंडिया चले गए और मार्केट में ढूंढते ढूंढते चले गए कि भाई मैंगो कहां मिलेगा, मैंगो कहां मिलेगा। तो आपने वहां देखा कि मैंगो का टोकरा भी पड़ा हुआ है और वहां एक साहिब जो है बड़े मजे ले लेकर वो मैंगो को खा रहा है। तो जाहिर है कि जब वो खा रहा होगा तो उसके चेहरे मोहरे से आपको अंदर तो हो बड़े मिठास में है ये, तो ये आइनुल यकीन हुआ। और जब आपने मैंगो खरीद करके अपने मुंह में रखा, अब आपको हक्कुल यकीन नसीब हो गया। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि किताबों में पढ़ेंगे कि तज़किया, उसकी सारी तारीफ है, किताबों में तवाजु, किताबों में तकब्बुर, किताबों में सब्र, किताबों में शुक्र, क्योंकि तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए कि अंदर की वो कैफियत किताबों में कोई ला ही नहीं सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे शख्स के पास जाना पड़ेगा जिसके पास ये सारी चीजें हैं, और उसकी जिंदगी को गौर से देखना पड़ेगा सीखने की नीयत से, और उसकी सोहबत में बैठना पड़ेगा इस नीयत से कि अल्लाह इस तेरे बरगुजीदा बंदे जिसने अपने नफ्स को कुचल दिया है तेरी खातिर, उसके दिल में तूने जो अखलाक फाजिला रखे हैं उसको मेरी तरफ मुंतकिल फरमाकर उसकी मुझे भी कुछ मिठास अता फरमा। और साथ साथ में जिक्रुल्लाह की कसरत, जब ये दो काम करेगा तो फिर उसे भी हक्कुल यकीन इंशाल्लाह नसीब हो जाएगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु आमना वालुहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। गुफ्तगु थोड़ी लंबी हो गई मगर मौजू भी जरूरी था और एक अच्छी तरतीब से अल्लाह ने जहन में बांट डाली। इसकी तरफ आने की सबको जरूरत है, उम्मत जो है इससे गाफिल है, इसी वजह से मासी से बचने की कोशिश करती है नहीं कर पाती, तौबा की कोशिश करती है नहीं कर पाती। और जब तक ये ताल्लुक अल्लाह जल्ल जलालुहु आमना वालुहु के साथ हमारा उस्तवार नहीं होगा, उस वक्त तक मसाइब से हिफाजत की कोई गारंटी नहीं। अल्लाह अगर चाहे तो दे दें, अगर अल्लाह चाहे तो गिरफ्त में ले लें। और जब दिल दुरुस्त हो जाता है तो अल्लाह जल्ल जलालुहु आमना वालुहु वबा की शक्ल में जिस चीज को भेजते हैं और पूरी दुनिया उसके सामने घुटना टेक देती है और खौफ ज्यादा हो जाती है जैसे कोरोना वायरस से, उसी वबा को ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत करके अपने कुलूब का तज़किया करा लिया है उनके लिए रहमत बनाकर उनको उसी वबा के जरिए शहादत की मौत अता फरमाते। अल्लाह जल्ल जलालुहु आमना वालुहु हम सबको ये समझ अता फरमावे और तज़किया की फिक्र अता फरमावे। इस वक्त मेरे जो अहबाब हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं उनकी खिदमत में भी गुजारिश है और बाकी उन तमाम दोस्तों से जो दूसरे मशाइख से भी वाबस्ता हैं कि इससे बेहतर आपको खलवत का मौका नहीं मिलेगा। 24 घंटे का एक निजाम बनाओ, तिलावत करो, जिक्र करो, गुनाहों से बचने का इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, फिल्म, टीवी, म्यूजिक, इनसे बचो, बहुत ज्यादा टेलीफोन पर इधर उधर बात करने से बचो, सोशल मीडिया पर वक्त जाये मत करो, अवकात की हिफाजत करो। 24 घंटे का एक रियलिस्टिक जेन्युइन प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाओ जिस पर आप आसानी से अमल भी कर सके और हर चीज को, बीवी को हक दे सके, माँ बाप को हक दे सके, बच्चों को हक दे सके, अपने मुताला को हक दे सके, स्टडीज को हक दे सके, काम को हक दे सके, जिस्म को हक दे सके, इन सारी चीजों को ख्याल रखते हुए अपने तज़किया को आगे बढ़ाओ। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अलआकिबतु लिल मुत्तकीन व अस्सलातु व अस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। रब्बना ग़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عتيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Thank you.